भाई सब तैयार है, तस्वीरें भी और पोस्टर्स भी।
तुमने अब तक मेरी खराब तस्वीरें देखी हैं? बहुत आला अच्छा प्रिंट है। मैं नहीं कर सकता, एक तरफ कॉलेज दूसरी तरफ एजेंसी, मालूम नहीं कब तक फारिग होऊंगा। मुझे जाना है बाकू। बात सुनो, झंडों का क्या हुआ? बहुत देर हो जाएगी। हाँ ना भाई, इस वक्त मेरे सामने क्या? हेलो, होल्ड करना, कोई और लाइन पे। हेलो हेलो, सलाम ताहिरा, कैसी हो? अम्मी कैसी हैं? ठीक है।
सलाम सरकार।
कहाँ घुसे आ रहे हो?
आपने ही तो बुलाया था।
अब रुको एक। नहीं, तुमसे नहीं कह रहा ताहिरा, अम्मी को मत लेके आना, उनके पैरों में दर्द है, ठीक है? ओ मेरी बहन, यहाँ हलवा थोड़ी बट रहा है, बखुदा मैं बहुत फंसा हुआ हूँ। बात सुनो मेरी, तुम खुद उन्हें समझा दो, यहाँ आई तो कैद हो जाएंगी। ताहिरा समझ क्यों नहीं रही? ताहिरा देखो बहन, अभी मैं मसरूफ हूँ, तुम्हें बाद में खुद कॉल करता हूँ मैं, ओके? ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
आपने कहा था ऊपर आओ, तुम आ गए।
चलो चलो जल्दी कार्टन उठाओ, बहुत देर हो चुकी है। गाड़ी में रखो, शाबाश, जल्दी करो।
सब हो गया साहब।
ये लो सामान, ये तुम्हारा हुआ।
साहब बहुत शुक्रिया, वो आज़री गाना डाल दिया इसमें?
हाँ डाल चुका हूँ।
साहब माफी चाहता हूँ, एक और सवाल है, ये कैसे काम करता है? पिछली बार शाम तक एक ही चैनल सुनना पड़ा मुझे।
कि राइट साइड पे बटन होगा, उसको दबाना चल जाए।
ये वाला? बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
ये सब क्या है?
क्या चीज सर?
अरे इनकी बात कर रहा हूँ मैं।
तस्वीरें हैं।
मैं जानता हूँ ये तस्वीरें हैं, मगर तुम्हारा काम काफी गिर गया है।
क्यों सर?
क्योंकि बात ही नहीं, क्योंकि तुम वक्त ही नहीं लगा रहे। फोटोग्राफी के लिए वक्त लगाना पड़ता है। अगर तुम इन तस्वीरों को ग्रेजुएशन के वक्त लाते तो रद्द हो चुकी होती।
आप संजीदा तो नहीं ना?
इत्तेफाक से मैं बहुत संजीदा हूँ।
जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस वक्त आधे से ज्यादा तालिबिल्म यहाँ थे ही नहीं, और आज मेरा काम गया गुजरा हो गया।
यही होना चाहिए, तुम दूसरे तालिबिल्मों का काम कब से करने लगे?
अगर सच पूछे तो?
सच की गुंजाइश नहीं है, मैं तुम्हारे काम को पहचानता हूँ, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है।
मैं शर्मिंदा हूँ सर।
शर्मिंदगी? एक बार तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे सुधर जाओगे।
मैंने माजरत की तो?
माजरत की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ चाहते हो कि गलतियां दोहराते रहो।
सर सर रुकें तो एक मिनट, देखिए बात तो सुन ले मेरी आप, एक एक बार।
एक ही जाविये से ये पोर्ट्रेट कितनी बार बनाओगे? क्या ये खातून तुम्हारी जानने वाली है?
मगर थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं इसे, आज़रबाईजान से आई थी 3 साल पहले। ड्राइंग मजमून है इसका, मैं इसका ड्राइंग मॉडल बन गया, और ये मेरी।
जितना वक्त तुम दूसरे कामों में लगाते हो, अगर इसका आधा भी फोटोग्राफी पर लगाओ तो आज ईरान के बेहतरीन फोटोग्राफर बन जाओ।
कहाँ रह गए थे आप?
कहीं नहीं कहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में। माफ़
नहीं, उसका क्या हुआ, नंबर मिले?
हाँ एक बड़ा सा अंडा मिला, वो भी मोहतरमा के पोर्ट्रेट की वजह से।
अरे आपको भी पता है क्या हुआ? मैं गई और उन्हें माफी चाहती हूँ, इन्हें उस्ताद को दिखाया तो कहने लगे सारे मॉडल बदलें या फिर ड्राइंग को उठाकर इन्हें एक तरफ रख दें। क्या हंसना था क्या? मैं मजाक नहीं कर रही आपसे, एक मिनट रुकिए तो शरीफी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है, कहाँ जा रहे हैं, रुकिए तो।
हाँ तो है, आपको क्या एजेंसी जाना है, मुझे देर हो रही।
मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं?
कसम खा ली है कि आइंदे किसी की मदद नहीं।
माफ कीजिएगा, आप मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहते? हाँ मैं सिर्फ
देखिए सारा साहब, आप ईरान आकर यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहती थी, मैंने मदद कर दी, अब मुझे माफ कीजिए।
वाह, पता नहीं क्या समझ रहे हैं आप अपने आप को, बहुत कुछ समझने लगे आप।
अब क्या कर सकते हैं? खुदा सलाम सलाम बैठे।
हाँ मैं ऑफिस में हूँ, क्यों क्या हुआ, क्या बात है?
35 आदमी? अरे बाबा बोल रहा हूँ 35 आदमी, समझ नहीं पा रहे क्या? मेरे अजीज जरा अपने उस टेप रिकॉर्डर की आवाज तो कम करो, अरे थोड़ी कम करो ताकि मेरे जुमले तो सुन लो, कहीं पिछली बार की तरह ना हो कि लोग इतराज करने लगे, तो लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। शाबाश, अच्छा किया आवाज कम कर दी, अब समझे। देखो 15 जोड़े मियां बीवी के, 10 सिंगल बेड वाले कमरे, लिख लिया? ठीक है, अच्छा तो फिर देखो, इंशाल्लाह मंगल बुध को हम भी वहां आएंगे। हाँ क्या? नहीं मेरे भाई, ये भी कहीं होता है? यकीनन होगा, तुम खुद तहकीकात कर लो। बहुत शुक्रिया। ये लो। अरे बाबा, तुमने क्या किया है उनके साथ?
अब क्या हो गया?
ये तीसरा लेटर है जो बाकों में हमारी हमख्याल कंपनी की जानिब से आया है। भाई जान, लुबे लुबाब सुना दो तुम्हें, अब वो लोग तुम्हें वहाँ फटकने भी नहीं देंगे।
ये खुशफहमी है उनकी।
अरे बाबा, उन लोगों का क्या कसूर है? वो भी हम दोनों की तरह एजेंसी वाले हैं। उनकी वजारत खारजा ने कहा है कि अगर हमारे साथ शराकत दारी करेंगे तो उनकी एजेंसी बंद कर दी जाएगी।
या तो मैं इस टूर पे जाऊंगा मददी, या ये सारे टूर्स ही खत्म। भैया, अगर हम ये चंद टूरिस्ट भी ना ले जाएं तो भूखे मर जाएं। मुझे समझ में नहीं आता उन्हें मेरे बर्ताव से क्या मसला है।
आराम से रजा, घोड़े पे क्यों सवार हो? जरा सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। जब से वो लोग शोरियों के हाथों टूटे हैं, अब अपने साये पर भी भरोसा नहीं करते, समझे? उन्हें हर चीज में लगता है कोई गड़बड़ है। बस
मुझे जाना होगा, अगर नहीं गया तो समझो जहाँ से चला था वहीं लौट।
भाई किसने कहा जहाँ से चले थे वहीं लौट जाओ? मैंने तो नहीं कहा, अगर मैंने कहा तो गलती थी मेरी। मैं तो कहता हूँ सब्र से काम लो रजा, अपनी नैया तो पार लग जाने दो भाई, कहीं और कटवर कर लो। यूरोप चले जाओ, चाइना चले जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ, और फिर सर्दी में कोई बाको थोड़ी जाता है। तो मेरी बात आखिर क्यों नहीं समझते? अरे मेरे बच्चे, सर्दी में कोई बाको थोड़ी जाते हैं। मेरी जान, इस काम को मेरे हवाले कर दो। हाँ यही बेहतर रहेगा।
मैंने कह दिया ये नामुमकिन है। भाई मैं भी एक मुसाफिर हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन मेरा रास्ता रोक सकता है।
हाँ मुझे पता है तुम्हें कौन रोक सकता है, फकत तुम्हारी वालदा मोहतरमा ही तुम्हें रोक सकती हैं। वालदा मोहतरमा,
अगर आपने वालदा को फोन किया तो ये अच्छा नहीं होगा।
अरे मेरे अजीज, मेरे शफीक, मेरे शराकतदार, मेरे दोस्त, तुम किससे उलझ रहे हो? देखो अगर तुम खुद भी बॉर्डर पे चले जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। बल्कि छोड़ो, क्या तुम नए नवेले मार्केट में आए हो? अगर उनकी कुल तादाद को 4 गुना भी बढ़ा दें तब भी आधे ईरान के बराबर नहीं है। भाई वहाँ तुम किस लिए जाना चाहते हो? वहाँ किस चीज की तलाश है तुम्हें? यहाँ तो हर चीज है तुम्हारे पास। अरे बाबा फिर नाराज हो गया।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे काम की जगह।
तो मेरा भी दफ्तरी काम है, क्या आप अपने तमाम ग्राहकों से ऐसे ही बात करते हैं?
तुम मेरी ग्राहक नहीं हो, समझी?
जो भी हो,
आराम से देख के। तुम अपना काम फोन पे नहीं बता सकती थी?
नहीं बता सकती थी।
जी हाँ ठीक है जी, बिल्कुल।
अच्छा तो इस पर डेट क्या लिखूं?
तीसरी तारीख और वापसी की मैं आपको बता दूंगा।
आप एक दिन पहले बताइएगा।
जी हाँ ठीक है,
आप अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। मेरा भाई परसों आ रहा है ईरान।
ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे क्यों आ रहा है?
बीमार है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, कोई भी इसकी बीमारी की वजह नहीं समझ पा रहा। कहते हैं यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन
बहुत खुश आमदीद, ये लीजिए। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह, ये है असली ईरानी शरीफ फज की चाय। अब बोलिए, ईरान बुरी जगह है क्या?
मददी साहब,
अरे मेरे भाई, मैंने कहा मूसा साहब नहीं है तो मैं मेहमान नवाजी के लिए आ गया, गलत किया।
शुक्रिया आपका, चाय ले।
मैं समझा नहीं था, माफी चाहता हूँ।
चाय ले।
वो आ नहीं रहा था, लेकिन मैंने उससे बहुत जिद की।
अगर पैसों की जरूरत है तो कह सकती हो तुम।
नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ये चाहती हूँ कि कोई अच्छा अस्पताल जानते हो तो मुझे बता दो।
परेशान मत हो, मुझसे जितना हो सका मैं करूँगा।
अगर खुदा ना खास्ता, जाने दो, मैं तुम्हें जहमत नहीं देना चाहती।
नहीं, कैसी जहमत? कल तुम्हारे लिए वक्त ले लूंगा मैं, बस जैसे ही वो आ जाए मुझे इतना जरूर दे देना तुम, ठीक है?
ठीक है।
चाय पियो।
मैं अब चलती हूँ।
क्यों? कहाँ?
बहुत देर हो गई है।
रुको एक मिनट, मैं छोड़ दूंगा तुम।
अरे नहीं, मैं पैदल चलना चाहती हूँ।
मुझे पता है तुम नाराज हो तस्वीरों की वजह से। मजाक किया था मैंने, वो तस्वीरें बहुत पसंद आई हैं सर को।
खैर वो तो आने ही थी।
मुझसे कोई काम तो नहीं है ना? मैं जरा जा रहा हूं, जल्दी है मुझे। और हाँ याद रखना मददी, पीछे हटने वाला नहीं हूं मैं।
रजा, मुर्गी की एक टांग होती है क्या? उससे इज्जत कर रहा है, कोई बात नहीं। हाँ हेलो ताहिरा साहिबा, कैसी हैं आप? मददी हूं मैं।
जल्दी से कहो फौरन मेरे पास आए।
ठीक है।
कुछ पता नहीं चला ऑफिसर?
वालेकुम अस्सलाम, तुम जवानों को सलाम नहीं सिखाया गया?
माफी चाहता हूँ, आइंदा ख्याल रखूंगा। कुछ पता चला क्या?
तुम सब्र करो, अंदाजे और गुमान से तो कोई काम नहीं बन सकता। क्या ख्याल है, बन सकता है क्या?
क्या अगले 10 सालों में भी कुछ नहीं पता चल सकता?
तुम्हारी नजर में कोई और रास्ता है? इन 10-12 सालों में तो कोई सबूत नहीं मिल सका, ना कातिल ना कोई सबूत।
आपको कैसे पता कि वो मर चुके?
देखो, बाकू की पुलिस ने यह बयान दिया है कि उसने इस तारीख में सिर्फ 2 नशेइयों को पकड़ा था, 2 माहीगीर, उनकी उम्र भी 40 से ऊपर की थी। और आपका भाई?
मतलब मेरी बातों पे यकीन नहीं?
इसका मेरे यकीन से कोई वास्ता नहीं। हम सिर्फ 50% तक जानते हैं, बाकी 50% बाकू की पुलिस को मालूम है, जो हमारा इतना साथ नहीं देती। जवान, तुम्हारा बैग। हाँ ठीक है, मैंने फाइल भिजवा दी थी, क्या मिली नहीं तुम्हें? शाम को आऊंगा मैं, ठीक है? हाँ पहुंच जाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, घबराओ नहीं, काम हो जाएगा।
वही मसला है लुत्फी साहब, मैं क्या करूं?
जरा होल्ड करना, आप जाइए टैंक की दुकान पे, कुछ टैंक खरीद कर बॉर्डर की तरफ निकल जाइए।
मेरी बात मजाक लगी आपको?
संजीदा हूं मैं, आपकी तहकीकात मामले को खराब कर रही है।
अगर कोई अजनबी आपके वालिद और भाई को मार गया होता तब भी यही कहते कि?
उन्हें नाहक कभी रायगा नहीं जाता, ये हमेशा याद रखना।
जमान, ओ जमान, शाबाश है भाई तुम। लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, हाँ ठीक है यहीं यहीं रुको। हाँ
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, देर क्यों हो गई?
ज़हे नसीब, वाह।
क्या ज़हे नसीब?
मुझे नहीं लगता इलेक्शन में इतना हल्ला गुल्ला होता है, ताज्जुब है, ईद का समा लग रहा है।
क्योंकि तुमने अब तक नजदीक से ढंग के इलेक्शन देखे ही नहीं। अभी देखा ही क्या है?
यहाँ रख दो ना साहब भाई।
हाँ जरा सा ऊपर, ये लो।
ये क्या है?
तेहरान का बहुत बड़ा डॉक्टर है, परसों का वक्त दिया इससे मैंने तुम्हारे भाई की। वैसे क्या खबर है भाई की?
कल सुबह 10 बजे तक पहुँचेगा।
तो फिर 12 बजे वहीं ले आना जहाँ मिलते हैं, तुम्हारे भाई को भी देख लूंगा, मिलना चाहता हूँ।
बेकार के वादे मत करो, फिर देर से आओगे।
मैं और वादा खिलाफ?
अच्छा ना भाई, पता नहीं क्या समझ रखा है खुद को।
हाँ थोड़ा सा ऊपर करो और। हाँ बस यही ठीक है। अरे अम्मी यहाँ क्यों खड़ी हैं? अम्मी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम बेटा, पता नहीं मेरी कब आंख लग गई बैठे बैठे।
हाँ ठीक है, लेकिन दरवाजे पे क्यों सो रही? जमान क्या मर गए थे तुम?
साहब मैंने इन्हें देखा ही नहीं।
आइए अम्मी अंदर चले। ताहिरा से कहा था मैंने कि आपको ना आने दे, इतना लंबा सफर है, खामखा थक गई होंगी, क्या जरूरत थी आने की?
मैं ना आती ताकि तुम मजे से लोगों को गिरो उधर गिरो उस पार ले जाओ, अपने आप को भी मुश्किल में डालो और दूसरों को भी, यही चाहते थे ना तुम?
तो इसका मतलब मददी ने बता दिया?
खुदा मगफरत करे मददी के माँ बाप की, कम अज कम उससे तुम्हारी फिक्र तो है। ये बताओ उसका नाम क्या है?
कौन अम्मी जान?
बेटा मैंने उसकी तस्वीर देखी है, माशाल्लाह बहुत हसीन है, खूबसूरत है, शर्मीली है। तुम आखिर मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे, मसला क्या है आखिर?
अल्लाह पूछे तुमसे मददी।
देखो बेटा ये मददी वददी के बहाने अब मेरे साथ नहीं चलेंगे, 1 महीने से अपनी बहू के इंतजार में हूँ, अब यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि तुम मुझे उससे मिलवा दो।
अच्छा ठीक है, मेरे इम्तिहानात थे उसमें मसरूफ था मैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ना बताऊँ?
मैं यहाँ तुम्हारा घर बसाने आई हूँ और इसके बाद ही जाऊंगी, लेकिन अगर तुम इसी तरह मुझसे आंख मचोली खेलते रहे तो फिर मैं जा रही हूँ बेटा।
लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है।
तो फिर मैं तो
बात सुने। अच्छा ठीक है, आप 1-2 दिन का वक्त दे दें, फिर उसको भी देख लीजिएगा और उसके भाई को भी, ठीक है? चलें चाय पिलाता हूँ आपको अच्छे से, आए। हाँ सुनो रहमती, वो सारा कहाँ?
लड़कियाँ बता रही हैं तो जा चुकी है।
कब?
पता नहीं थी, किसी सहेली ने फोन किया और वो चली गई।
बताया नहीं किसका फोन?
वो तुर्की में बात कर रही थी, मेरी समझ में नहीं आया, मगर अपनी बातों में कुछ अस्पताल का जिक्र कर रही थी।
अस्पताल?
सुपरवाइजर साहिबा, सुपरवाइजर साहिबा, ऑपरेशन थिएटर में जाइए। डॉक्टर औलादी साहिबा, डॉक्टर औलादी साहिबा, दफ्तर से रुजू करें।
जी मैं आपको बताती हूँ।
एक्सक्यूज मी,
दो मिनट रुकिए,
बात सुनिएगा मेरी एक।
जी हाँ लिखिए।
मेहमानों से गुजारिश है, मुलाकात का
रजा
होने वाला है।
जी जी वो यहीं पे एडमिट है।
अस्सलाम वालेकुम, कहाँ थी तुम?
सुपरवाइजर साहिबा, सुपरवाइजर साहिबा, ऑपरेशन थिएटर में जाइए। सुपरवाइजर साहिबा, सुपरवाइजर साहिबा, ऑपरेशन थिएटर में जाइए।
अभी तहरान पहुंचा नहीं कि इसकी तबीयत बिगड़ गई। सुबह जब से आया है बिल्कुल 70-80 साल के बूढ़े की तरह। पता नहीं क्या हो गया इसे, एडमिट करने को कहा गया है।
बीमारी क्या है आखिर?
कैंसर, कैंसर है मैदे का।
उन्हें पता है इस बात?
सुबह जब से आया है कोई बात नहीं की मुझसे, बस यही कह जा रहा है वापस चलो बाकू।
बाकू?
सारा
तुम ठीक हो?
कौन है ये?
बताया तो था तुम्हें।
रजा कहते हैं मुझे, सारा का दोस्त हूं।
ये तो हमारी जबान भी जानता है, इसे कहो यहां से चला जाए, कहो इसे यहां से चला जाए।
भाई ये कैसी बातें कर रहे हो?
अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? नर्स बात सुने।
जी डॉक्टर साहब।
इन पर दवा असर कर रही है, इनको रूम में लेके जाइए।
ठीक है आइए।
माफी चाहती हूँ, तुम तो इसकी हालत देख रहे हो ना।
ये तुम्हारा शुक्रिया का तरीका था? उसे ऐसा क्यों कहा तुमने?
हम कल सुबह वापस जा रहे हैं।
ना मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी और ना तुम यहाँ से जाओगे। मुझे ये जगह बहुत पसंद है असलान।
यही रहने की वजह से तुम्हें इतनी जबान दराजी आ गई है।
तुम्हें जाना है तो जाओ, अकेले ही जाओगे।
तुम मुझे एक ईरानी के बदले बेच रही हो।
इस कदर ईरानी अज़रबैजानी की रट मत लगाओ। हम हैं क्या? हम सब इसी मिट्टी के हैं, हम सब मुसलमान हैं। हमारे दरमियान फर्क ही क्या है? सिर्फ हम सबकी बनाई हुई एक लकीर है, और वो भी हमारी खुद की बनाई हुई है।
मैं तुम्हारा भाई हूँ सारा, समझी तुम?
क्या भाई? हमेशा तुमसे डरती रही हूँ। जब तुम घर आते थे मैं खुदा खुदा करती थी तुम मुझे अजियत ना दो, मेरी किताबें मेरी कॉपियाँ ना फाड़ दो, मुझे थप्पड़ ना मारो। ऐसे हो तुम।
हम सुबह वापस जा रहे हैं।
असलान अब दोबारा मेरी जिंदगी तबाह मत करो। मैं वापस नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
बस मैंने कह दिया ना।
कोई बात नहीं सर, अगर उनकी जगह मैं भी होता तो शायद यही सब कुछ करता। एक चीज तो भूल ही गया।
मैं क्या कहूं तुमसे? ये क्या है?
शायद एक तोहफा है।
क्या बात है, आज कोई खास दिन है?
अरे तोहफा देने के लिए किसी दिन की जरूरत तो नहीं होती, ऐसे प्यार मोहब्बत में तोहफे वोफे तो चलते रहते हैं। पसंद आया तुम?
कलर पेंसिल, मैं कलर पेंसिल की खुशबू की आशिक हूँ।
मुझे पता नहीं था कि कलर पेंसिल की खुशबू भी होती।
दो खुशबूएं मुझे बहुत पसंद है, एक कलर पेंसिल की और दूसरी वो जो मेरे पास है।
चलो अच्छी बात, कल मिलते हैं फिर।
ठीक है।
सुनो कॉल कर लेना।
कर लूंगी।
हाँ क्या हुआ?
यार नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई जवाब ही नहीं देता। अजीब आलम है, समझ से बाहर है।
अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ बाकू में जो तुम्हारा जानने वाला है क्या वो इन अफराद का ठिकाना निकाल सकता है? सिर्फ नाम चाहिए मुझे, अगर वो पत्थर के नीचे भी होंगे तो भी ढूंढ निकालूंगा।
ठीक है ठीक है, मैं कल सुबह उससे फोन कर लूंगा। ठीक है।
तुम्हें शर्म नहीं आती मददी?
क्यों, मेरी फिक्रमंदी गलत है?
तुम्हारी मुखबरियों का बदला तो मैं फुर्सत से चुकाऊंगा। अच्छा सुनो मदद दी, फिर फोन करूंगा मैं तुम्हें। कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। खुदा हाफिज।
अरे जाओ यार, मेरा दिमाग खा गए।
आखिर उस बेचारे का क्या कसूर है? तुम मुद्दतों से अपने बाप और भाई के कत्ल की तफ्तीश में लगे हो। ओहो बस भी करो, सुकून से जीना नहीं है तुम्हें? क्या तुम्हारा बाप राजी होगा कि तुम इस किस्म का बुखार अपने सर पर मुसल्लत कर लो?
क्या इस गुनाह की जिम्मेदारी भी मेरे सर है? मेरी माने तो वापस चले, ताहिरा वहां अकेली है।
मेरे बच्चे, मैं वहां जाती हूँ तो मेरा दिल तुम्हारी तरफ अटका रहता है, और यहाँ आती हूँ तो ताहिरा की जानिब।
आपने अपनी आंखों से देख लिया कि ठीक हूँ मैं? टिकट ले लूं कल आपके लिए अम्मी?
हरगिज नहीं, मैंने कह दिया ना मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारा घर आबाद करने के लिए।
बिल्कुल नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जब तक मैं ये ना जान लूं कि बाबा और मुश्तबा के साथ क्या हुआ है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता अम्मी।
अरे कम से कम उसे दिखा ही दो, क्या ये भी ज्यादा है?
उसका भाई हॉस्पिटल में है, बाद में मिलवा दूंगा।
तो फिर अस्पताल चलते हैं, ये भी बहुत सवाब का काम है मेरे बच्चे।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
ये क्यों लिया?
साहब पीछे की तरफ फूल वालों के पास गया था, काफी महंगा बेच रहे हैं।
शुक्रिया।
जैसे वो मुझे देखता है कमर झुका के कहता है सलाम जवान साहब, सलाम जवान साहब। अच्छा आपके बाकी पैसे साहब, साहब बाकी पैसे, साहब बाकी।
माफ कीजिएगा, कागज मिल जाएगा? जी जी क्यों नहीं।
आइए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम सलाम। ये है सारा साहिबा जिसे देखना चाहती थी।
अरे आप यहाँ क्यों आ गईं? जहमत हुई यार।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल तस्वीर की तरह हसीन और मासूम है।
बस करें। भाई कैसे हैं सारा?
सुबह से तो इंजेक्शन की वजह से सो रहे हैं। आप इजाजत दे तो मैं उनके कमरे में रखकर आ जाऊं।
जाओ मेरी बच्ची जाओ।
मैं अभी आता हूं।
अभी आते
कोई बात नहीं। चलो।
क्यों कहा गया?
मैंने कहा चलो।
अचानक ऐसा क्या हो गया?
सुनो क्या हुआ?
मैं तुम्हें फोन कर लूंगा, ठीक है? फिलहाल खुदा हाफिज।
ठीक है।
अम्मी अम्मी बताएं तो क्या हुआ, क्या हो गया अचानक?
तो चल रहे हो या मैं टैक्सी से चली जाऊं?
ठीक है बैठ।
कब तक यहाँ टैक्सी रोक के रखूं? तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, मेरा तो मीटर डाउन है। कुछ पूछना है? अगला धोखेबाज है क्या? तो फिर होगा यकीनन, जब खामोश हो तो जरूर होगा।
डॉक्टर साहब, मेरा भाई असलान अपने कमरे में नहीं है।
आप घबराएं नहीं, उन्हें एक्सरे के लिए लेके गए होंगे।
एक्सरे लैब जा चुका था, अभी तो होके आया था।
जरा देखो तो सही, कैसे हमारे पैसे लूट कर मजे उड़ाते हैं। खुदा जाने कब ठीक होंगे ये लोग। गलत कह रहा हूँ? हो सकता है भाई मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ। कब तक यहाँ टैक्सी लेके खड़ा रहूँगा?
अच्छा, तुम्हें यकीन है कि वही है?
जिस तारीख का तुम्हें कह रहा हूँ, ये शख्स अज़रबैजान के उसी हिस्से का सिपाही था। उनकी तस्वीरें तुम्हें ईमेल कर दी हैं, चेक कर लो।
भाई तुमने मेरी बड़ी मदद कर दी, इंशाल्लाह इसका बदला चुका दूंगा। हैदरी, जरा मेरी ईमेल चेक करो, उसकी तस्वीर आ गई या नहीं। अगर आ गई हो तो एक प्रिंट मेरे पास ले आना, ठीक है?
बात सुनो, क्या हो गया आखिर?
उनके सिफारत खाने पे भी एतराज किया है, मैं और तबरेज वहाँ गए थे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं
दिया। क्या मुझे यह हक नहीं कि मैं जान सकूं कि क्यों लगाई ये पाबंदी? देखें, वो लोग हमसे सिर्फ एक पुल के फासले पर है बस।
मेरे बच्चे, ये पुल सरात तो नहीं है ना? अगर बाल बराबर भी फासला हो तब भी हल हो जाएगा। हर काम का एक तौर तरीका होता है। इंशाल्लाह तुम फिक्र मत करो, जवाब मिल जाएगा।
काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं।
आप यहां क्या कर रहे हैं?
अब मैं नहीं चाहता कि तुम उसका पीछा करो। अगर तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा, मेरी लाश से गुजर कर ही तुम सारा तक।
क्या हुआ? मैं समझे शायद वो एजेंसी चली गई हो। अम्मी को यहाँ के रास्तों का नहीं पता। कौन से रिश्तेदार? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता यहाँ। देखो मैं अभी मसरूफ हूँ, कुछ इत्तला मिले तो मुझे बता दो। ठीक है, फोन का वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। आप क्यों उठे? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दोबारा हॉस्पिटल जाना होगा आपको।
क्यों पड़े हो उसके पीछे?
मैं? किसके पीछे?
ज्यादा नादान मत बनो। अपनी माँ को अस्पताल क्यों लेकर आए थे? सारा से क्या कहा तुमने?
सारा को तो कुछ नहीं कहा।
जिस वक्त मैंने तुम्हें देखा था तभी समझ गया था ये तुम्हारी खाम ख्याली है। मेरी लाश से गुजर कर ही तुम सारा तक पहुंच सकते हो। उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा।
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, ना ही सारा बच्ची हो ना आप उसका कुछ बिगाड़ सके।
अगर वो बच्ची ना होती तो तुम्हारे पीछे उठकर इस खराबे में ना आती।
बात सुने, मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर आप इस वक्त मेरे घर में मौजूद ना होते तो मैं आपको इस बात का जवाब अच्छी तरह देता।
मैं उसे वापस ले जाना चाहता हूं। मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। उसे अज़रबैजान जाना होगा, वही उसका वतन है। उसे वहीं जिंदगी गुजारनी होगी, वहीं शादी करनी होगी और वहीं मरना होगा। समझ रहे हो ना?
वो जानती है तुम यहां?
तुम सारा को नहीं जानते, उसे तुम इतने भी अच्छे नहीं लगते। उसे लौट जाने दो, वरना सुन लो, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं कर जाऊंगा। समझ तो रहे हो ना मेरी बात?
चली गई थी अम्मी?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम रजा, तुम घर पे हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कितनी बार तुम्हें फोन कर चुकी हूँ, असलान बताए बगैर अस्पताल से जा चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हेलो, नहीं हो क्या?
अस्लान, तुम अब तक कहां थे?
सारा, मैं यहां इस तरह नहीं मरना चाहता। मुझे अज़रबैजान ले चलो, मैं यहां नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
रजा, मैं कहती हूँ हम यहाँ से लौट चलते हैं। तुम्हें वहाँ एक अलग माहौल भी मिल जाएगा और ताहिरा भी है वहाँ।
अम्मी जान, अगर सारा के दिल में कुछ ऐसा था तो क्यों नहीं कहा मुझे? मैंने उसे मजबूर तो नहीं किया था ये सब कुछ करने पर?
हर सलाम के पीछे कोई कलाम नहीं होता और हर मुस्कुराहट का मतलब मोहब्बत नहीं होती।
तो फिर इतनी तवज्जो मुझे समझ में नहीं आता। मैं मान नहीं सकता, मुझे तो लगा था वो बहुत चाहती है मुझे।
क्या करूं खुदाया, जब से तुम्हारे बाबा और मुश्तबा के साथ वो हादसा रोनुमा हुआ है, हम लोगों की जिंदगी भी जैसे किसी उलझे हुए धागे की मानिंद हो गई है। उस इमाम जादे की कसम जिसकी मैंने नजर की है, अगर मैंने तुम्हें शादी के लिए कहा था कि तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए, उस अजनबी शहर में कोई एक तो हो जो तुम्हें एक गिलास पानी को पूछ लिया करे।
अम्मी जान, आपकी सारी बातें ठीक है, मगर मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना? आखिर आपने सारा में ऐसा क्या देखा जो मैं नहीं देख पाया? क्या इतना भी नहीं पूछ सकता मैं?
मेरे बच्चे, मेरा दिल कटता है, मेरा जिगर जलता है। एक रात भी जो तुम चैन से सोए हो तो मुझे बता दो। देखो, अगर किसी काम में ना ज्यादा होती हो तो इसमें खुदा की मर्जी होती है, खुदा ने नहीं चाहा होगा।
खुदा की कसम कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी।
देखो बेटा, मैं तो कहती हूँ आओ वापस लौट चले, कम से कम इतना होगा कि मुझे कुछ अरसे के लिए सुकून मिल जाएगा।
लेकिन ये सब कुछ उससे सुनना चाहता हूँ, वो खुद बोलेगी मुझे। हेलो सारा, कैसी हो तुम, कहाँ हो?
वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हो बेटा?
जी ठीक हूँ।
अम्मी जान, आप चल के मैं आता हूँ।
अरे सामान तो ले लो।
मैं ले आऊँगा भैया, आप जाइए।
ले आओगे?
ले आऊँगा, परेशान मत हो।
और सुनाओ बेटा, तुम यहाँ तो सब ठीक ठाक है ना?
जी अम्मी, आइए चलिए, थक गई होंगी ना?
आप कोई थकन नहीं रही बोलिए।
रात को हॉस्पिटल के दरवाजे पर आई तो मैंने देखा कि वो वहाँ खड़ा था। इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस कदर इसरार किया कि मैं जाने पर मजबूर हो गई। बॉर्डर तक सब कुछ ठीक था, पर अचानक उसकी तबीयत इतनी क्यों बिगड़ गई मैं समझ ही नहीं पाई, और उसको देख के मैं बहुत परेशान हो गई थी।
कम अज़ कम बताना चाहिए था तुम्हें, एक फ़ोन तो कर सकती थी ना?
असलान ने करने ही नहीं दिया। बाद में मैंने तुम्हें बहुत फोन किया पर तुमने उठाया ही नहीं। मैं ये समझी कि तुम शायद।
चलो आओ, अंदर चले।
फिलहाल तो कोई मसला नहीं है, बजाय शौक के असर खत्म हो चुके हैं और इनकी होश की सतह भी नॉर्मल हालत पे लौट चुकी है। सिर्फ इनके टेस्टों की रिपोर्ट्स का इंतजार करना होगा।
तो रिपोर्ट कब तक मिलेगी?
कुछ दिन लगेंगे।
डॉक्टर साहब, कुछ उम्मीद की जा सकती?
इन्हें तेहरान में क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? आतों के ऑपरेशन के मामले में ईरान मिडिल ईस्ट में पहले नंबर पर है।
वो खुद ही नहीं चाहता था।
अब भी काफी देर हो चुकी है, कैंसर ने आतों को 80-85% तक खत्म कर दिया है।
डॉक्टर साहब,
माफ कीजिएगा।
आओ चले।
तो कहाँ?
मेरे घर पर। तुम थकी हुई हो, आराम कर लो कुछ।
लेकिन।
कोई लेकिन लेकिन नहीं, असलान की फिक्र मत करो, उसकी देखभाल हो रही है। चलो।
اوہو، آج سورج کہاں سے نکل آیا؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ میری نرس باجی ہیں طاہرہ صاحبہ، جو امی کو کہیں جانے ہی نہیں دیتی.
میرا کیا قصور ہے، امی کو خود یہ جگہ بہت پسند ہے.
بہت خوشی ہوئی.
مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. آئیے خوش آمدید.
امی جان، یہ آپ بہت غلط کر رہی ہیں.
یہاں اس لیے لائے تھے کہ دوبارہ اس کے پیچھے چلے جاؤ. میں بھی کتنی غلط فہمی میں تھی جو سمجھ رہی تھی
کہ اگر سارا کو ڈھونڈنے کا بتا دیتا تو کیا آپ ساتھ آتی؟
ظاہر ہے کہ نہیں آتی.
تو پھر رہنے دینا آپ، اس کا بھائی ہاسپٹل میں ہے، تھکی ہوئی ہے وہ. آپ کے گھر کا دروازہ تو ہر مسافر اور پریشان حال کے لیے کھلا ہوتا ہے، اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں.
جب تک وہ یہاں مہمان ہے، خدا کی رحمت ہے، اس کے قدم سر آنکھوں پہ ہیں، اس کی عزت اپنی جگہ. مگر مجھے تم سے بالکل ایسی توقع نہیں تھی.
اچھا پلیز ناراض مت ہوں، اس کے پاس چلی جائیں، اس کا دل نہ ٹوٹے کہیں. اسلان کے لیے پریشان مت ہو تم، ٹھیک ہو جائے گا.
ایک بھی اچھا واقعہ مجھے یاد نہیں. جب تک ہماری امی حیات تھیں اسے برداشت کرتی رہی، مگر امی کے بعد اس کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی. انہی دنوں ہمارا ملک شوراوی سے الگ ہوا تھا، اور یہ میرا بھائی فوج کا سپاہی بن گیا، اور میں خوش ہو گئی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے اس کے شر سے آزاد ہو جاؤں گی. اور پھر ہمیں اطلاع ملی کہ جس فوج میں میرا بھائی تھا اس کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے. میں بچی تھی، مجھے کیا معلوم سازش کیا ہوتی ہے. اور ایک دن نشے کی حالت میں گھر آیا، فوجی لباس میں بہت بھیانک لگ رہا تھا. وہ ہر کسی سے بری طرح بہانے بہانے سے لڑتا رہتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے بابا پہ بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا. ہم نے اسے ہاسٹل میں داخل کرا دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور میرے بابا یہ دکھ لے کر مر گئے.
کیا اسلان فوج میں تھا؟
ہاں. کیوں؟
کچھ نہیں، یوں ہی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تمہاری نیند خراب کر دی نا.
رضا کہاں گیا؟
صبح سویرے ہاسپٹل چلا گیا.
ہاسپٹل گیا ہے؟
ہاں.
تو مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟
امی نے جگانے نہیں دیا، انہوں نے کہا تم تھکی ہوئی ہو.
مجھے جانا ہوگا.
کہاں بیٹی، تم نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا.
میں کافی زحمت دے چکی ہوں آپ لوگوں کو.
بیکار کی باتیں مت کرو، گھبراؤ نہیں، آؤ بیٹھ کے ناشتہ کرتے.
مجھے ہاسپٹل جانا ہے، وہیں سے کل میں باکو روانہ ہو جاؤں گی. مجھے اجازت دیں.
امی، ہمیں بھی ہاسپٹل جانا چاہیے.
چلو یہ رکھ دو ذرا.
ڈاکٹر اسفن مرکز سے رجوع کریں.
نرس صاحبہ پلیز، صرف پانچ منٹ چاہیے، زیادہ وقت نہیں لگے گا.
آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی مریض کی حالت بالکل بھی مناسب نہیں ہے.
میں بس ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور کچھ.
جیسے آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟
ان کا بہنوں ہی ہوں میں.
صرف پانچ منٹ، اس سے زیادہ نہیں، جائیے.
شکریہ. اسلان، اسلان، میری آواز سن سکتے ہو تم؟ مجھے بس تم سے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا تم فوج میں تھے؟
अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बाहर जाइए, मैंने कहा ना बाहर निकलिए, आप आइए बाहर आइए, अकबरी साहिबा बाहर जाके इंतजार कर रहे हैं, आप मेहरबानी होगी बाहर आ जाइए, आप आइए।
इशाद पर साहब दफ्तर से रब्ता करें।
सुनिए, आपने कहा था आप उनके रिश्तेदार हैं, ये उनकी चीजें हैं, अपने पास रखिए।
इशाद पर साहब दफ्तर से रब्ता करें।
हाशमी साहिबा, साफ साफ बताएं मुझे क्या बात है।
ताहिरा, मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, वो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता था। MRI से जैसे ही उन्हें लेकर आए उसके बाद वो नजर नहीं आया।
फिर आपने उसे ले जाने क्यों दिया?
अरे वो आपका शोहर है, आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? माफ कीजिएगा।
घबराओ नहीं, मेरा भाई एक अकलमंद इंसान है, इस काम के पीछे जरूर कोई वजह होगी।
या परवरदिगार, पंजतन पाक के सदके में हम सबको परेशानी से निजात दे दे। चलो बेटा चलो।
चलिए। मोहम्मद साहिबा, इसे अपनी जगह पर रख दें। मेरी अम्मी वगैरह कहाँ हैं?
वो वहाँ हैं।
ठीक है,
एक मिनट आती हूँ।
हैदरी साहब एक मिनट रुकिए।
उठो बेटा, जल्दी चलो।
लेकिन कहाँ?
मैं समझ गई हूँ वो दोनों कहाँ गए होंगे, अगर हम जल्दी चले तो उन्हें ढूंढ निकालेंगे, यहाँ करीब ही होंगे। चलो
मुझे यहाँ क्यों लाए होते?
ये जगह तो अच्छी तरह याद होगी ना तुम्हें, उस तरफ आज़रबैजान, इस तरफ ईरान।
मुझे वापस ले चलो।
अब तुम्हारी उस दिन की बातों का मतलब समझ आया मुझे, तुम सारा के लिए फिक्रमंद नहीं थे, अपने लिए थे, है ना? चुप क्यों हो, तुमसे बोल रहा हूं मैं। इस नहर को देख रहे हो? यह नहर मेरा सारा बचपन है, सारा बचपन। देख रहे हो कितना सन्नाटा है यहां, कोई भी नहीं है यहां। जानते हो अगर कोई पागल यहां किसी पे गोली चला दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं भी किसको सुना रहा, तुम्हें तो पता हो गई।
ये मुझे कैसे पता होगा?
तो फिर ये सब क्या है? ये मेरे भाई मुश्तबा का लॉकेट है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है बताओ मुझे। खुदा की कसम असलान, बता दो मुझे।
एक विस्की की शर्त, जो उस कश्ती को मार सके। نادر کیا ہوا ڈر گئے؟ وہ تو صرف ماہی گیر ہیں.
ایک ہی کنیا کی لگاؤ جو انہیں ورک کر سکے.
نہیں دوست, مرد بن گئے تم تو, نشانہ لگاؤ.
آخر ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ میری طرف دیکھو, تمہیں یاد ہے نا اس دن کشتی سے پانی میں گر گیا تھا؟ تم سے بات کر رہا ہوں, گونگے کیوں بن گئے؟ تم پہلے ہی دن مجھے پہچان گئے تھے نا, کیوں کیا, کیوں کیا تم نے یہ؟
اسلان
اسے رہنے دو, ایک بار اس مسئلے کو حل ہو ہی جانے دو.
اچھا تو کیا آپ جانتی تھی کہ اسلان
ہمیشہ سے جانتی تھی لیکن کبھی اظہار نہیں کیا.
اسے تمہاری ماں کا چہرہ اب تک میری نظروں کے سامنے ہے, اس سے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا میں, بدبخت.
تمہیں حساب دینا ہوگا اسلان اس تکلیف کا جو میری ماں نے سہی, اس تکلیف کا جو مشتبہ نے سہی.
جانتے ہو نا کون سی غلطی کر رہے ہو تم؟ جانتے ہو نا
اسلان, میں ڈر رہا ہوں اسلان
بہت بڑی غلطی کر رہے ہو تم. ہاں
اسلان
جہنم میں جاؤ, پہاڑ میں جاؤ, سن رہے ہو نا تم میری بات؟ تم ایک ڈرپوک اور بزدل انسان ہو, جہنم میں جاؤ, مرو یہیں پر, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. منہ بند رکھو, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
تم جیسے جانور کو کیا فرق پڑتا ہے, ہم اور اس پار کے لوگ سب ایک ہی ہیں. نہر کے اس پار کے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں, لیکن تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ تم درندے ہو.
ہمت ہے تو مار ڈالو مجھے, مار ڈالو. مارتے کیوں نہیں ڈرپوک, مار ڈالو مجھے.
رضا تمہیں تمہارے باپ کا واسطہ, چھوڑ دو اس کو, جانے دے اس کو, ختم کرو یہ سب.
جب آپ نے اسے اسپتال میں پہچان لیا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا امی؟
میں نے اتنے سال زبان اس لیے نہیں کھولی تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو جائے. अगर इस लड़की का पीछा छोड़ने के लिए कहा तो वो सिर्फ इसलिए कि किसी दिन तुम जान जाते, इसलिए नहीं बताया कि अगर तुम जान जाते तो उसके बारे में अपने दिल में कीना रखते।
आप भूल गई क्या अम्मी, आपको याद नहीं है मुश्तबा कैसे भीख मांग रहा था जिंदगी की, मैं कैसे तड़प रहा था उस वक्त।
क्यों नहीं रजा, मेरी कमर टूट चुकी है, सिर्फ एक तुम्हारा ही आसरा है मुझे। मेरी जिंदगी को इससे ज्यादा सिया मत करो बेटा रजा। मेरी औलाद की लुगत में इंतकाम लेना नहीं है, इसकी हालत तो देखो, पहले ही क्या दिन देख रहा है ये, दिन ब दिन इसकी हालत बस से बदतर होती जा रही है। छोड़ दो रजा इसको, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ बेटा, छोड़ दो इसको, खुदा के लिए छोड़ दो।
रजा,
ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी ना, अपने भाई को बचाना चाहती थी ना तुम।
बाखुदा मैं खुद अभी समझी हूँ, जिस रात ये हॉस्पिटल आया था उसने मुझे कुछ और कहानी सुनाई थी, इसने बताया कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, वो सब नशे ही थे।
और तुम मान भी गई ना, मेरा माहिगीर बाप और 7 साल मुश्तबा नशे ही थे।
समझ गई हूँ, मैं सब कुछ समझ गई हूँ रजा, असलान ने मुझसे भी झूठ बोला, लेकिन वो मेरा भाई है। रजा बीमार है, मर रहा है वो।
अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहता,
या खुदा रजा।
अस्लान,
डॉक्टर अब्बासी इमरजेंसी में तशरीफ ले आइए।
खून की बहुत जरूरत है, ओ नेगेटिव।
क्या खून की जरूरत?
डॉक्टर अब्बासी इमरजेंसी में तशरीफ ले आइए।
भाई उसका ब्लड ग्रुप हमसे मिलता है, छोटी बहन की हैसियत से तुमसे गुजारिश करती हूँ।
तुम जानती हो वो कौन है?
तो क्या हुआ, फिलहाल एक मरीज है जिसे खून की जरूरत है। तुमसे इल्तिजा है भाई रजा, आओ मेरे साथ चलो। मेरी खातिर? इल्तिजा है तुमसे। आ जाओ, आओ। रजा मुझसे नाराज है।
उठो मेरी बच्ची, हमें यहाँ बैठने से अब कुछ भी हासिल नहीं होगा, चलो उठो
उठो, आओ चलें।
वो जब तक फौज में था उससे सुकून नहीं था, याशार उसे तंग करता रहता था और वो उसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसे पता था याशार का ग्रेड बढ़ गया था और वो अफसर बन गया था। जब मैं ईरान आना चाह रही थी तो असलान मेरी शादी याशार से कराना चाह रहा था।
क्या वो अभी तक फौज में है?
चंद साल पहले वो जंग में मर गया, वो एक महासरे में दूसरी फौज में घिर गया था,
तो डर के मारे अपने ही सर में गोली मार ली उसने। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, कल वहीं से मैं रवाना हो जाऊंगी बाकू।
कल हम तीनों चलेंगे, फिर वहां फैसला कर लेना तुम।
उठो, तुमसे बोल रहा हूँ, सुन रहे हो मुझे? जवाब दो, तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो मुझे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, ऑफिसर लुत्फी साहब, मैं रजा शरीफी हूं।
ताहिरा, ताहिरा जल्दी से आओ यहाँ।
मैं अभी आती
बच्चों को यतीम कर दिया, बस तुम्हें खुदा माफ करे।
भाई साहब, भाई साहब जरा बात सुने, इधर आए।
एक मिनट, ऐसे मत देखो, एक जमाने में ये भरपूर पैर था, दोस्त मुझे सुनहरे पैरों वाला कहते थे। मुझे लगा कि चंद साल पहले तक मैं फुटबॉल खेलता था, पहले दस्ते की टीम में, शहर में, मगर फिर एक दिन किसी बंदे खुदा के साथ हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे, लेकिन वो टैक्सी वाला पता नहीं क्या हुआ, उसे नींद आ गई या क्या हुआ, अचानक एक्सीडेंट हुआ और मेरी हड्डियाँ टूट गईं।
उसके बाद क्या हुआ?
फिर कौन सा बात?
ड्राइवर का पूछ रहा हूँ, उसका क्या हुआ?
कुछ नहीं।
कुछ नहीं?
मैंने उसे खुदा पे छोड़ दिया।
बस
उठो चले, नमाज देर हो रही है।
कुछ भी नहीं किया तुमने उसका?
वो खुद बाल बच्चों वाला था, बहुत परेशान हाल था। मैंने देखा अकामत कही जा रही है, चले। जहमत दे रहा हूं तुमको, जरा रुकना, मेरी चप्पल। ओहो चलो।
Oh अज़रबैजान की हुकूमत चंद सालों से इस वाक़े के होने से भी इनकार कर रही थी। अलबत्ता ये पहली बार नहीं हुआ, हमारे 100 से ज्यादा अफराद को बेगुनाह मार डाला है। लेकिन शुक्र है खुदा का, असलान ने इतराफ कर लिया था, जिसकी वजह से हम उसके दफन की जगह ढूंढने में कामयाब हो गए। ये बहुत अच्छी बात है, और अज़रबैजान की हुकूमत ने भी इस वाक़े की जिम्मेदारी को कबूल किया, और उन लोगों ने हुकूमत ईरान से माफी भी मांगी है, और वहाँ की हुकूमत ने इस हादसे के नुकसानात और खून बहा देने का वादा भी किया है।
हमें दियत की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो रकम ले लीजिए, अज़रबैजान में जो मोहताज हैं उनको दे दीजिए। क्या मुझे अब भी तुम्हारे बचपन की तरह तुम्हें यहीं आके ढूंढना पड़ेगा?
बस यहाँ तन्हाई में कुछ देर बैठने के लिए आया, जैसे बाबा की याद में आया करता था हमेशा।
अब जबकि तुम यहाँ आ गए हो तो उनकी कब्र पे भी चले जाओ।
अब मैं रात को पुरसुकून नींद सोऊंगा माँ, पुरसुकून।
पुरसुकून नींद साफ शफाफ दिलों को ही मिला करती है। कीने से भरा दिल अगर दरिया जितना भी हो तो काला ही रहता है।
अम्मी जान, वो चली गई क्या? सारा की बात कर रहा हूँ।
अब क्या बचा था उसके रुकने के लिए?
कब्र पे भी नजर नहीं आई मुझे।
नहीं, वो आई थी मगर दूर खड़ी रही ताकि तुम उसको देख ना सको। तुम्हारे मिजाज का ख्याल रखा उसने, लेकिन जिस वक्त मैंने उसकी आपबीती सुनी तो मेरा दिल दहल गया। उस बेचारी ने अभी दुनिया के रंग ही नहीं देखे थे और अभी एक जनाजा उसके हाथों पे रह गया। पता नहीं बॉर्डर के उस पार पहुंची या नहीं पहुंची, और उसकी उसकी उम्मीद सिर्फ तुम थे। अब मैं ये नहीं कहती कि तुमसे वापस लेने जाओ, मगर रजा, मगर मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। हर इंसान की फितरत एक जैसी नहीं होती। अस्लान सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं था, हम सबका था, मगर उसकी बहन नहीं, और हम भी किसी के दुश्मन नहीं है।
मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता अम्मीजान, आपकी तरह नहीं बन सकता। आपका दिल बहुत बड़ा।
क्या तुम्हें अपने बचपन के वो दोस्त याद हैं जिनमें से कुछ इस पार के थे और कुछ उस पार के थे? जिनमें से दोमान इस पार का था और दोहान वहां का था और मोहसिन यहाँ का था। नूर मोहम्मद, याद है तुम्हें? नूर मोहम्मद वो उस पार का था और तुम इस पार के थे।
उस वक्त हर चीज मुख्तलिफ थी। बाबा थे उस वक्त, मुश्तबा था उस वक्त।
नहीं नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं बदला, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। देखो रजा अभी यहाँ बैठे हैं ना। देखो बेटा, मैं तुम्हें कसम देती हूँ, अभी बेटा इसी नहर के किनारे जाओ अपने बाप और मुश्तबा की कब्र पर, जितनी भी तलखियाँ हैं माजी की तुम्हारे दिल में, और उन सबको अपने दिल के अंदर दफन कर दो। और जब तक अपने अंदर की जंग खत्म ना कर दो मुकम्मल तौर पर, तो वापस मत आना।
अजीब दुनिया है ये, देखो
एक सादी सी लकीर है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ आजरबैजान। अगर इस तरफ से उस तरफ कदम रख दूं तो क्या हूँ? अजनबी। मगर अभी जिस जगह मैं खड़ी हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं, ये दुनिया का हिस्सा नहीं, 0 पॉइंट है। एक
मैं अरसलान को माफ कर चुका हूँ।
मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम उसे मेरी खातिर माफ करो? तुम्हें काम करना था खुद से, क्योंकि उसे उसका बदला मिल चुका था। अरसलान ने तुम्हारे बाप और भाई पे गोली चलाई थी, मगर वो खुद बेचारा हालात की भेंट। जानते हो कसूरवार कौन लोग हैं? कसूरवार वो हैं जो हमें एक दूसरे से जुदा कर रहे हैं। पहले टीजर और रशिया, फिर शराबी और कम्युनिस्ट।
मैं यहाँ ना तो इंतकाम के लिए आया हूँ, ना तुम्हें छोड़ने के लिए। मेरा सिर्फ तुमसे एक सवाल है, तुम्हें सिलाई कढ़ाई और खाना बनाना तो आता है ना? ये वो भी तुम्हारी ड्राइंग की तरह खराब है।
इसका क्या मतलब है? तुम हाथ मिलाने आए हो दोस्ती का?
तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। चले।
अच्छा एक मिनट रुको। क्या कहा तुमने?
मैंने कहा तुम्हें पता है इसका जवाब।
पता है तो फिर पूछा क्यों? ये लो मेरा बैग पकड़ो। ठीक है,
बहुत अच्छी लग रही।
चले।
लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले से बता दूं, मैक्रोनी पिज्जा और बाहर के खाने मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं।
तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? ओहो, यहाँ हंसना था क्या?
वैसे सारा, क्या वाकई कलर पेंसिल्स की खुशबू होती है?
हाँ ना, झूठ क्या है इसमें? इसको समझने के लिए बंदे को फनकार होना चाहिए। रजा, ये जो कलर पेंसिल्स है, इनसे सबसे पहले मैं क्या बनाऊं?
एक प्यारा सा मंजर।